नमस्कार दर्शकों, ऊर्जा में अब तक आपने देखा कि एक सुखी और शांत जीवन बिताने के लिए धर्म की ऊर्जा ही एकमात्र सहारा बन सकती है। पिछले एपिसोड में धर्म शब्द के विशेषणों पर गुरुजी ने प्रकाश डाला। उन्होंने ये भी कहा कि जिसे हम धारण करें वही धर्म है। बहुत अलग बात कही ना उन्होंने। चलिए इसी विषय पर और बातें करते हैं उन्हीं के साथ।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। गुरुजी, अगर हम धर्म की व्याख्या धारण करे वही धर्म है ऐसे कहें तो फिर मन कुछ अकुशल बातें भी धारण कर लेता है, तो उसे तो हम धर्म नहीं कह सकते ना। तो फिर बिना विशेषण के धर्म क्या है यह हम कैसे जाने?
बेटी, ये धर्म शब्द का बड़ा पुराना और रोचक इतिहास है जिसे आज हम भारत में भूल गए। 2600 वर्ष पहले भारत की जो जनभाषा थी, जिसे प्राकृत कहते थे, पाली कहते थे, उसका सारा साहित्य अपने यहाँ से लुप्त हो गया, पड़े स्वदेशों में रहा। उसमें सब जब गुजरते हैं तो ऐसे शब्द सामने आते हैं, कुशल धर्म, अकुशल धर्म, कल्याण धर्म, पाप धर्म, आर्य धर्म, अनार्य धर्म, सत धर्म, असत धर्म। तो आज के भारत के लोग तो सुनकर के बड़े आश्चर्य में पड़ जाएं। कुशल धर्म तो ठीक, धर्म कुशल होता है, अकुशल धर्म कैसे हुआ? कल्याण धर्म तो ठीक, पाप धर्म कैसे हुआ? तो नई सी बात लगती है, लेकिन उन दिनों ये प्रचलित थे। इस तरह के अनेक शब्द प्रचलित थे, उनका अर्थ ये होता था कि चित्त ने क्या धारण किया, चित्त ने कैसी चित्त वृत्ति धारण की। कुशल चित्त वृत्ति धारण की तो उसे कुशल धर्म कहें, अकुशल चित्त वृत्ति धारण की उसे अकुशल धर्म कहें, कल्याण की चित्त वृत्ति धारण की तो उसे कल्याण धर्म कहते थे, पाप की वृत्ति धारण की तो उसे पाप धर्म कहते थे। एक धर्म का अर्थ ये भी कि स्वभाव, जो चित्त वृत्ति धारण की उसका क्या स्वभाव है। कल्याण की वृत्ति धारण की तो ये कल्याण का धर्म, उसका स्वभाव हमारा कल्याण करने वाला। पाप की वृत्ति धारण की तो उसका स्वभाव हमें व्याकुल बनाने वाला। यूं उसका अर्थ स्वभाव के रूप में भी हुआ, लेकिन मुख्यतः धारण करने के रूप में। हम देखते हैं उस साहित्य का अध्ययन करने पर कुछ समय बीतते 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 ये होने लगा कि जो जो धारण करने में हमारा भला करती हैं उस चित्तवृत्तियों को धारण करने योग्य कहा। इसे धारण करना चाहिए, ये करणीय है, कुशल वृत्ति धारण करणीय है, हमारा कर्तव्य है। पाप वृत्ति धारण करना हमारा कर्तव्य नहीं है, उससे बचना चाहिए। तो जो जो कर्तव्य हुआ उसके लिए धर्म शब्द का प्रयोग होने लगा, और जो न करने योग्य है उसको अधर्म कहने लगे। ये इतिहास धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कैसे धर्म अधर्म शब्द, तो आगे जाकर के धर्म कर्तव्य को कहने लगे, जो आज भी कहते हैं कर्तव्य को धर्म कहते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है।
जी गुरुजी, गुरुजी इस बारे में कुछ और समझाएंगे?
बेटे, धर्म को बहुत थोड़े शब्दों में समझाया। 2600 वर्ष पहले भी भगवान बुद्ध के पास एक बुढ़िया माई आई, कहा महाराज बहुत थोड़े में और बड़े सरल सरल भाषा में मुझे समझा दीजिए धर्म क्या होता है। भगवान मुस्कुराए, धर्म तो सरल भाषा में ही समझाना चाहिए। तो उन्होंने उन दिनों की जनता की भाषा में, पाली में, बहुत सरल सरल शब्दों में समझाया। क्या समझाया? सब पापस अकरणं, सारे पाप कर्मों से बचो, मत करो, इनसे बचो। कुशलस्य उपसंपदा, जो कुशल कर्म है, अच्छे कर्म है, उनकी संपदा एकत्र करो, माने वो कर्म करो, इकट्ठे करो। और सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को निर्मल करो। कैसे निर्मल करो? परियोदपनं, संपूर्ण चित्त निर्मल हो जाए, केवल ऊपर ऊपर का चित्त निर्मल होकर न रह जाए, सारा चित्त निर्मल हो जाए। बस एतं बुद्धान शासनं, बस यही शिक्षा है, बुद्ध की नहीं, सभी बुद्धों की। एक और भ्रांति अपने यहां भारत में चली, क्योंकि यह परंपरा ही नष्ट हो गई यहां, तो हम जब बुद्ध कहते हैं तो एक सिद्धार्थ गौतम ही बुद्ध हमारे सामने आता है। न जाने कितने बुद्ध हुए उनके पहले, और न जाने आगे कितने बुद्ध होने वाले हैं। तो बुद्धान शासनम, सभी बुद्धों का यही शासन है, शासन माने शिक्षा है। सभी बुद्ध, जो बुद्ध होगा केवल इतनी बात सिखाएगा, इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं, सारा धर्म इसमें समा गया। पापों से बचे, कुशल कर्म करें और चित्त को निर्मल करें। कोई बुद्ध होगा वो बौद्ध धर्म नहीं सिखाएगा। बुद्ध की वाणी कोई 30-35 हजार पृष्ठों में, 15 हजार पृष्ठों में वाणी, और फिर आगे उनके टीकाएं, अनुटीकाएं, इतना बड़ा विशाल साहित्य, बौद्ध शब्द नहीं मिलता उसमें। धर्म सिखाता है, कोई बुद्ध होगा तो धर्म सिखाएगा, और उसके शिक्षा पर चलने वाले लोग धार्मिक कहलाएंगे, बौद्ध नहीं कहलाएंगे। बौद्ध कहते तो एक सीमा में बंध गए, और धर्म तो अपरिमित है, असीम है। तो बार बार का अपमानो धम्मो, धर्म असीम, उसको ससीम मत बनाओ, छोटा मत बनाओ। तो ये तीनों बातें सबके लिए लागू होती है। सार्वजनीन धर्म है, सार्वदेशिक धर्म है, सार्वकालिक धर्म है, बस इतना ही धर्म है।
जी गुरुजी, धर्म की परिभाषा तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाई। गुरुजी, आपसे इसी विषय पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, माना कि धर्म का पालन करने से ही लाभ होता है, पर गुरुजी जिसे हम सत्संग कहते हैं उसका भी तो कुछ लाभ होता होगा ना?
जरूर लाभ होता है बेटी, अगर कोई लाभ लेना चाहे तो, जाने तो। किसी भी संत की वाणी सुनना, किसी ज्ञानी पुरुष से धर्म को समझना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सुन करके धारण न करे और केवल वाणी विलास, बुद्धि विलास एक मनोरंजन का साधन हो गया, चलो घंटे भर कहीं मनोरंजन करना है, किसी सिनेमा में गए कि कोई टीवी खोल लिए कि कुछ कर लिया, चलो आज सत्संग में चलें, घंटे भर सत्संग सुन लेंगे, वही ठीक होगा, तो ये मन बहलाव की बात नहीं है। सुने, उसे समझे और फिर उसे धारण करे। अपने यहां भारत में आज नहीं, पहले जमाने में भी इसी तरह से लोग केवल सुनना बोलना, सुनना बोलना, उसी में अपना जीवन बिता देते थे, धारण नहीं करते थे। तो भारत का एक महान संत कवि कहता है, कथे बदे सुने सब कोई। कथे, बोलने वाला खूब बोलता है, धर्म की बात बोले जाता है, उसको बोलने में आनंद आता है। बदे, खूब बोलता है, खूब कहता है, सुनने वाले खूब सुनते हैं, उनको सुनने में आनंद आता है। तो कथे बदे सुने सब कोई, फिर कहता कथे न होई सुने न होई। उस कहने से कुछ नहीं होता, सुनने से भी कुछ नहीं होता, तो कब होता है? तो कहता किए होई, उसको धारण करे तो होगा, तो लाभ मिलेगा। धारण नहीं करे तो केवल बुद्धि विलास का विषय, वाणी विलास का विषय, मनोरंजन का विषय, लाभ नहीं मिला बेटी।
जी गुरुजी, गुरुजी अब तो सब कुछ बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरुजी अक्सर ऐसा होता है कि सब कुछ समझते हुए भी हम समय आने पर कुछ ऐसा करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, हम पता नहीं शुद्ध धर्म का जीवन नहीं जी पाते, फिर गुरुजी ऐसा क्यों होता है?
बेटी बुद्धि के स्तर पर हजार समझ लें, स्वीकार भी कर लें, पर जब तक मन वश में नहीं है तब तक कुछ नहीं होता। मन वश में हुए बिना धारण कैसे करेंगे? मनोरंजन कर लेंगे, बहुत अच्छा इस संत महाराज ने बहुत अच्छा कहा, इस ज्ञानी जी ने बहुत अच्छा कहा, अरे आज तो धर्म की बात खूब समझ में आ गई। क्या बना? धारण तो नहीं किया। और धारण इसलिए नहीं किया कि चाहता है धारण करना, कर नहीं पाता, चाहता है धारण करना, कर नहीं पाता। अपने यहां एक प्रसंग, महाभारत का प्रसंग, गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को शिक्षा दे रहा है, धर्मम चर सत्यम वद, सच बोलो और धर्म का आचरण करो। चार अक्षर है केवल, धर्मम चर सत्यम वद। दूसरे दिन पूछता, याद हुए? सबने हाथ उठा दिए, हाँ याद हुए। दुर्योधन भी, दुशासन भी, जितने थे सब हाथ उठाए, भीम भी, अर्जुन भी, एक ने हाथ नहीं उठाया, युधिष्ठिर ने हाथ नहीं उठाया। क्या हुआ? अभी नहीं हुआ। अरे चार अक्षर केवल, अभी नहीं हुआ। दो दिन बीते, चार दिन बीते, धर्मम चर आचरण में उतारना है ना, तो आचरण में उतारने के लिए मन वश में होगा तब कहूंगा कि सीख लिया। अभी कैसे सीख लिया? तो धीरे धीरे मन को वश में करना सीखा, धर्म का आचरण किया, तब कहता अब सीख गया। बाकी जिन्होंने कहा हम सीख गए, हम जान गए, हम जान गए, उनकी क्या दशा हुई? एक दुर्योधन की दशा आगे जाकर कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। खूब जानता हूं धर्म को, जानामि धर्म, सुना है ना अपने गुरु से, बहुत सुना धर्म की बातें, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, उस ओर प्रवृत्ति नहीं होती मेरी, मैं क्या करूं। और जानामि अधर्मम, अधर्म भी खूब जान गया, ये करना चाहिए तो ये नहीं करना चाहिए ये भी जान गया। न च मे निवृत्ति, उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। क्या हुआ? मन वश में करने का काम किया ही नहीं। तो उस युग में हो चाहे आज के युग में हो, जब तक आदमी अपने मन को वश में करने का काम नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, धर्म धारण नहीं कर सकता। मनोरंजन भले कर ले, उससे मन को वश में करना आवश्यक है।
जी गुरुजी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। गुरुजी आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी ऊर्जा का ये हिस्सा दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं सुरेश जैन जी इंदौर से। गुरुजी, एक धार्मिक व्यक्ति इस अधार्मिक दुनिया में कैसे जी पाएगा?
दुनिया जैसी है वैसी है, और हमें तो जीना है। तो अपने आप के मन को वश में करके, उसे सुधार करके बड़ी अच्छी तरह जी सकेंगे। कमल को देखा है, पानी में रहता है पर पानी की बूंद उसे नहीं लगती, किस तरह खिलता है। तो ऐसे ही दुनिया जैसी है वैसी है, हम अपने मन को वश में करके, उसे निर्मल करके धार्मिक जीवन जी सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।
जी गुरुजी। गुरुजी दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं नरेश त्रिपाठी। वो पूछते हैं कि गुस्सा द्वेष इत्यादि भावनाओं का दमन करना, इंद्रियों का निग्रह करना, ये सब तो मनोवैज्ञानिक रूप में नेगेटिव इफेक्ट्स देते हैं, ये तो ठीक नहीं है ना?
बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट है बेटी, ठीक नहीं है। पर कुछ नहीं से आरंभ करने के लिए तो दमन किया जाता है। दमन से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता, इसीलिए भारत में ऐसी एक विद्या ढूंढ निकाली एक महापुरुष ने कि जहां दमन का काम नहीं, शमन किया जाता है। दमन किया हमने, ऊपर वाले मन में कोई विकार जागा और हमने दबा दिया, क्रोध जागा हमने दबा दिया, द्वेष जागा हमने दबा दिया, वो दब गया लेकिन खत्म नहीं हुआ, भीतर ही भीतर बढ़ते जा रहा है, उसका संवर्धन हो रहा है, हमें व्याकुल बना रहा है। तो शमन करने के लिए उन जड़ों तक जाकर के उस विकार को निकाल बाहर करें, उसकी जड़ें निकाल बाहर करें, तो स्वभाव ही बदल गया। ये जो विद्या थी भीतर जाकर के जड़ों से विकारों को दूर करने की विद्या, ये भारत के महापुरुष ने ढूंढ निकाली, पुरानी विद्या थी, इसे विपश्यना कहते थे कि जड़ों से विकारों को दूर करके हमारे स्वभाव को कैसे बदल दे।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कमलेश कुमार जी उज्जैन से। सारी सृष्टि अगर प्रकृति के नियम के अनुसार चलती है तो फिर इंसान को भी उसी के अनुसार चलना चाहिए, तो फिर उसे सीखना क्यों पड़ता है?
जितने भी सजीव प्राणी हैं, मनुष्य भी एक सजीव प्राणी है, इन सारे सजीव प्राणियों में मनुष्य सबसे गया गुजरा है। जो प्रकृति के नियम हैं अपने मानस को ऐसे बिगाड़ता है कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जीना शुरू कर देता है और फिर कहता है ये तो मेरा स्वभाव हो गया, मैं क्या करूं, क्रोध करना मेरा स्वभाव हो गया, ईर्ष्या करने मेरा स्वभाव हो गया। अरे दूषित किया ना, तेरा चित्त बड़ा निर्मल था लेकिन तूने उसे दूषित करते 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 ऐसा गंदा बना लिया। तो उसको बदलने के लिए सीखना पड़ता है कि चित्त अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाए, उसी को स्वस्थ होना कहा, स्वयं में स्थित हो जाए, चित्त अपने स्वभाव में स्थित हो जाए, मूल स्वभाव में स्वस्थ हो गया तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जो बिगाड़ दिया तो बिगाड़ दिया, उसको सुधारने में समय चाहिए, प्रयत्न चाहिए, परिश्रम चाहिए।
जी गुरुजी। गुरुजी चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं श्रीनिवास जी मद्रास से। वो कहते हैं कि आप बार बार मन और चित्त की बात करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है?
बेटी 2600 वर्ष पूर्व के भारत में ये दोनों शब्द समान अर्थी थे, एक ही अर्थ होता था इनका, पर्यायवाची थे। आज भी तो हम देखते हैं आज के हिंदी में और अन्य भाषाओं में भी ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। हम कहते हैं मेरा मन बड़ा व्याकुल है, तो कभी ये भी कहते हैं मेरा चित्त बड़ा व्याकुल है, तो कोई इनके अर्थ में अंतर नहीं। जब जब हम मन कहें या चित्त कहें तो एक ही अर्थ में लेना चाहिए।
शुक्रिया गुरुजी। तो दर्शकों ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। जाइएगा मत, हम अभी लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी आपने विकारों से और आसक्तियों से मुक्ति पाने में विपाशना की बात की। गुरुजी ये विपाशना शब्द बड़ा अनजाना सा लगता है, इस शब्द का अर्थ क्या है?
बहुत समय बीत जाने पर लोग शब्द को भी भूल जाते हैं, किसी किसी शब्द का अर्थ ही भूल जाते हैं। अभी बेटी तूने कहा विपाशना, विपाशना नहीं है, संस्कृत में कहें तो विपश्यना और पाली में कहें तो विपस्सना। विपाशना तो बिल्कुल अलग अर्थ हो गया, तो समझो क्या अर्थ है इसका। पश्यना कहते हैं देखने को, पश्यति विशेषे न पश्यति इति विपश्यना, विशेष रूप से देखता है उसको विपश्यना कहते हैं। अब ये देखने की बात भी अर्थ बदल गया, आंख से रंग रूप रोशनी देखना देखना नहीं, यहां अपने भीतर सच्चाई को अनुभूति से जानना, उसको देखना। आज भी कभी कभी ये देखना शब्द अनुभव करने के अर्थ में आज भी इसका प्रयोग हो जाता है। जब कोई कहता है कि यह रसगुल्ला बहुत मीठा है तो चक्कर तो देख, चक्कर क्या देखे, उसका रंग देखे, उसका रूप देखे। यह गाना बहुत मधुर है तो सुनकर तो देख, तो सुनकर उसका रूप देखे, रंग देखे। ये मखमल बहुत मुलायम है तो छूकर तो देख, क्या देखे, देख माने अनुभव कर। ये पुरानी भारत की भाषा, तो विपश्यना माने विशेष रूप से अनुभव करना, अपने भीतर जो सच्चाई है उसे विशेष रूप से अनुभव करना। अनुभव तो करते हैं लेकिन भोक्ता भाव से करते हैं, दुख दुआ तो हाय रे मरे रे, सुख दुआ तो ओ क्या कहना, तो वो विपश्यना नहीं हुई। समता से देखेंगे, दृष्टा भाव से देखेंगे, त्रष्टा भाव से अनुभव करेंगे, तटस्थ भाव से अनुभव करेंगे, ये विपश्यना। यूं देखते 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 गहराइयों तक चले जाएंगे, मन के पैंदे में जड़ों में उसका क्या स्वभाव है उसे देखते देखते बदल देंगे। इसलिए बड़ी कल्याणकारिणी है, खो गई थी भारत से फिर आई है, लोग इसका उपयोग करते हैं और करते हैं उनको लाभ भी होता ही है।
जी गुरुजी। गुरुजी इस विपश्यना के सार के बारे में कुछ थोड़े में बताएंगे?
धारण करने की बात है, विपश्यना का मतलब अपने जीवन में धारण हो जाए। धारण हो जाए तो ही धर्म, अन्यथा धर्म नहीं। धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। सूरज उगेगा तब ना प्रभात होगा, धारण करेंगे तब ना धर्म होगा, अन्यथा कोरी बातें ही बातें, बातें ही बातें। तो धारण करने के लिए ये विद्या, तो क्या है ये विद्या? थोड़े में अगर इसे समझें तो शील, समाधि और प्रज्ञा, इन तीनों में ये सारी विद्या समा गई, विपश्यना समा गई, धर्म समा गया। इसलिए कहा गया शील धर्म की नींव है और ध्यान धर्म की भीत, और प्रज्ञा छत है धर्म की, मंगल भवन पुनीत। ये भवन है, धर्म का भवन है। ये तीनों बात जुड़ी कि धर्म पूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया। यही इसकी व्याख्या है बेटी
जी। गुरुजी शुक्रिया। गुरुजी इन धर्म के तीन स्टेप्स के बारे में हम और भी जानना चाहेंगे, लेकिन गुरुजी ये इस एपिसोड में संभव नहीं है, इसलिए अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी।
अच्छी बात।
सलाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी, सुखी।
सलाम माताजी। तो दर्शकों, आखिर हम उस मुकाम तक पहुंच ही गए हैं जहां हमें अपने तकलीफों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाई दिया है। इस विषय पर बात जारी रहेगी, लेकिन अगले हफ्ते। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा। नमस्कार, ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, पिछली बार हमने जाना कि विपश्यना के माध्यम से हम न केवल स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि उसके रूट्स तक जाकर उसे हमेशा के लिए मुक्ति भी पा सकते हैं। तो आइए विपश्यना के बारे में कुछ और प्रश्न पूछते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम माताजी। गुरुजी आपने हमें पिछली बार बताया कि विपश्यना के तीन चरण होते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं, उनमें से सबसे प्रथम शील के बारे में कुछ विस्तार में बताएंगे।
बहुत स्पष्ट है बेटी, शील माने सदाचार, माने शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों का अहित होता हो, अमंगल होता हो, उनके सुख शांति भंग होती हो, उनको पीड़ा पहुंचती हो, ऐसा कोई काम नहीं करें, तो शील है। और जब शील नहीं है तो धर्म के दूसरे अंग पुष्ट हो नहीं सकते। नींव है, धर्म की नींव है शील, और इसी नींव पर महल खड़ा होता है समाधि का, प्रज्ञा का, जो मुक्त अवस्था तक ले जाता है। नींव ही कमजोर हो तो न समाधि होगी न प्रज्ञा जागेगी। तभी कहा कि शील धर्म की नींव है और शील धर्म को प्राण, बिना शील धारण कर्या ना समाधि ना ज्ञान। न समाधि होगी न ज्ञान होगा, शील धारण करे तो ये अगले कदम आसानी से उठे। तो शील जब पुष्ट होता है, शील धर्म जब पुष्ट हो तो सही दृष्टि तब होए, तब सही रूप से बात को देख पाएंगे, मैंने अनुभव कर पाएंगे गहराई तक, और बिना शील धारण किए मुक्त हुआ ना कोई। ऊपर ऊपर से अपने को धोखे में हजार रख ले, लेकिन मुक्ति तब मिलेगी जब जड़ों से हम विकारों को निकाल बाहर करेंगे, और वो तब होगा जब हमारा शील पुष्ट होगा। शील क्यों पालन करें? एक सामान्य व्यक्ति जरा भी समझदारी से सोचे तो बात समझ में आएगी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और लोगों के साथ रहता है, परिवार में परिवार वालों के साथ रहता है, समाज में समाज वालों के साथ रहता है, तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है औरों के साथ कैसे रहे। अगर वो शील सदाचार का जीवन नहीं जीता है, शील भंग करता है, हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, किसी को ठगता है, नशा पता करता है, तो लोगों को अशांत करता है, सारे वातावरण में अशांति ही अशांति फैलती है, तो ऐसे अशांति के वातावरण में मैं स्वयं कैसे शांति से रह सकूंगा? जरा भी बुद्धि से सोचे कि सारे वातावरण को मैंने दूषित कर दिया, अशांत कर दिया, मुझे शांति कहां से मिलेगी? इतनी समझ के साथ ही कोई व्यक्ति शील का पालन करे बड़ी अच्छी बात है। और एक बात होश में आती है कि हमारी परंपरा ये कहती है कि अगर तू शील सदाचार का जीवन जिएगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और दुराचार का जीवन जिएगा, दुशील का जीवन जिएगा, तुझको नरक मिलेगा। उसको इस मान्यता का पूरा विश्वास है, तो इस मान्यता के मारे भी शील पालन करता है, करे किसी प्रकार भी करे, शील पालन करता है, अच्छी बात है। एक आदमी ये भी देखता है कि जो गवर्नमेंट का पिनल कोड है, उनका दंड विधान है, वो भी तो मेरे अगेंस्ट जाएगा। मैं हत्या करूंगा, मुझे दंड मिलेगा, चोरी करूंगा, दंड मिलेगा, व्यभिचार करूंगा, दंड मिलेगा। ये जितने भी शील तोड़ने के काम हैं, वो सारी सरकार भी तो नहीं चाहती, सरकार के नियम भी तो इसके विरुद्ध हैं, मुझको तत्काल दंड मिलेगा। ये सारे कारण हैं जिससे समझदार आदमी सोच करके समझ करके शील पालन करने का प्रयत्न करता है। लेकिन इससे एक और बड़ा कारण है, वो जब विपश्यना के द्वारा अपनी गहराइयों में जाकर के सच्चाई को देखता है, तब समझ में आता है कि एक और बड़ा कारण है जिसकी वजह से और जिस कारण से मुझे शील पालन करना अनिवार्य है, आवश्यक है। ये बात बहुत स्पष्ट होती है।
जी गुरुजी, गुरुजी इस मुख्य कारण के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, तो दर्शकों जाइएगा मत, लौटते हैं तुरंत। तो गुरुजी अभी अभी जो आप हमें बता रहे थे वो प्रमुख मुख्य कारण कौन सा है?
देखो बेटी, ये जो कुदरत का कानून है, निसर्ग के नियम है, वो सब पर एक जैसे लागू होते हैं। मैं अपने मन में विकार जगाऊं और व्याकुल नहीं हूं, ये हो नहीं सकता। विकार जगाते ही प्रकृति दंड देना शुरू करती है, मैं व्याकुल हो जाता हूं। ऐसे ही कोई व्यक्ति विकार जगाए, प्रकृति उसको दंड देना शुरू करती है। स्वभाव है, प्रकृति का नियम है। इसे एक कहानी से समझे। एक घटना, बहुत पुराने समय की घटना है, किसी राज्य में भी राजा के नियम कोई पालन नहीं करता, राज्य के नियम तोड़ता है, तो राज्य उसे दंड देता है, दंड विधान ऐसा है। उसमें कहीं चूक भी जाए, कोई अपराध भी कर दे और उसको दंड न मिले, कोई पक्षपात हो जाए, न्याय ठीक से नहीं हुआ ये भी हो जाए, प्रकृति भूल नहीं करती और प्रकृति देर भी नहीं करती। अभी अपराध किया, अभी दंड मिलेगा। अपराध किया माने विकार जगाया, विकार जगाया तो तुरंत व्याकुल होगा। तो जो अच्छा राज्य होता है वो इस बात का ख्याल रखता है कि न तो पक्षपात हो और न न्याय में देरी हो, न्याय होना ही चाहिए। जो भी व्यक्ति राज्य के नियम को तोड़ने का अपराध करता है उसे दंड मिलना ही चाहिए, वो व्यक्ति कोई हो चाहे। पुरानी घटना है, एक राज्य का राज पुरोहित, बहुत समझदार आदमी, वो देखता था कि लोग किस तरह से गलत रास्ते जा रहे हैं, धर्म का पालन नहीं करते और समझते हैं कि हम धर्म का नया पालन करेंगे फिर भी हम दंड से बच जाएंगे, क्योंकि इसकी कृपा हो जाएगी, उसकी कृपा हो जाएगी, हमने ये कर्म कांड कर दिया, हमने वो कर लिया, तो समझाता है, नहीं समझ में आती है उनके। तो राजा वो कहता है कि इनको समझाने के लिए मैं एक तरीका अपनाऊंगा, राजा को पहले बता देता है। फिर एक जौहरी की दुकान में गया और वहां तरह तरह के गहने पड़े हैं, बहुत कीमती गहने हैं, ये देखा वो देखा। फिर उस दुकान मालिक के देखते देखते एक बड़ा कीमती आभूषण उठाया और अपने पॉकेट में डाल लिया और चल पड़ा, उसको आशीर्वाद देता हुआ चल पड़ा। मालिक देखता है, बड़ा अजीब है, राजपुरोहित है और यूं आंखों में धूल डाल करके और ये हमारा छीन के ले जा रहा है, चोरी करके ले जा रहा है, उसके पीछे भागता है कि आपने चोरी की है, किए तो किए, क्या हुआ, मैं राजपुरोहित हूं। मामला जाता है पुलिस के पास, न्यायाधीश के पास, जज के पास। जज कहता आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं, आपको दंड मिलेगा। कैसे दंड मिलेगा, मैं देखे इतनी लंबी चोटी रखने वाला, जनेऊ पहनने वाला, पीताम्बर पहनने वाला, मुझको कैसे दंड मिल सकता है, चोरी की तो क्या हुआ। दंड मिलेगा भाई, चाहे जो कुछ हो, मुझके आपके साथ बड़ी सहानुभूति है लेकिन क्या करूं, दंड तो मिलेगा। मैं रोज सुबह शाम पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, इतने इतने कर्म कांड करने वाला व्यक्ति, और तुम कहते हो मुझे दंड मिलेगा, ये कैसे हो सकता है। क्या करें, राज्य का नियम है, हम न्यायाधीश हैं, हमें तो दंड देना ही पड़ेगा। आप देखिए मैं ब्राह्मण हूं और बड़ी ऊंची जाति का उद्दिच्च ब्राह्मण हूं, लोग मेरे पांव पूजते हैं और राजा भी मेरे पांव की वंदना करता है और मुझे दंड मिलेगा, क्या करें, मिलेगा। तो बात गई न्यायाधीश राजा के पास, के राजा तो समझा हुआ था, तो फिर उसने पुरोहित ने वो निकाल करके जेब उसको दे दिया और कहा देख भाई ये सारा कुछ नाटक हमने इसलिए किया कि राज्य के नियम भी किसी की तरफदारी नहीं करते, गलत काम करेगा दंड मिलेगा, ये प्रकृति कैसे तरफदारी कर देगी। कोई आदमी अपने को ब्राह्मण कहेगा इसलिए उसको छूट दे देगी, या कोई आदमी एक कर्मकांड करने वाला इसलिए उसको छूट दे देगी, दुराचार कर तो भी तुझे दंड नहीं मिलेगा। तो समझो ये समझावन दी उसने और ठीक दी, क्योंकि प्रकृति का नियम भी बिल्कुल ऐसा ही है कि ब्राह्मण हो या बाणियो और क्षत्रिय शूद्र हो कर्म जिसो ही फल मिले, अब वर्ण न पूछे कोई, किस वर्ण का है कोई नहीं पूछता, प्रकृति का नियम है। हमने आगे पर हाथ धरा तो आगे ये नहीं पूछेगी हाथ धरने वाला कौन है, ब्राह्मण है कि शूद्र है, कि हिंदू है कि मुस्लिम है, हाथ जलेगा ही, तो विकार जगाया तो व्याकुल होगा ही, कोई बचने वाला नहीं। ये होश रखे तो फिर शील सदाचार पालन करना आसान हो जाए।
जी गुरुजी, सचमुच आपके समझाने का ढंग तो बड़ा ही यूनिक है। तो दर्शकों जाइएगा नहीं, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी पहला प्रश्न पूछ रहे हैं करण कपूर पंजाब से, वो पूछते हैं कि ये जो धर्म की बात है वो तो बुढ़ापे में सोचनी चाहिए, हम तो अभी युवा हैं, हम क्यों इसके बारे में सोचें।
तो धर्म समझा ही नहीं, धर्म क्या है, जीवन जीने की कला है, कैसे सुखपूर्वक जिए, कैसे भीतर शांति का जीवन जिए और कैसे बाहर शांति का वातावरण तैयार करें जिससे और लोग भी सुख शांति का जीवन जिए, ये तो छुटपन से ही सीखना चाहिए, सारा लंबा जीवन सामने पड़ा है और बुढ़ापे में जाके सीखोगे तो और कितने दिन जीना है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए अपने। या गलत बात चल पड़ी कि धर्म के बाद बुढ़ापे में हो, नहीं, बचपन से होनी चाहिए, अभी से सीखना चाहिए, देर मत करो।
जी गुरुजी। गुरुजी दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं विशाल खन्ना जी आगरा से, आपने जैन बौद्ध इस्लाम खालसा ब्राह्मण इत्यादि टर्म्स के तो सही सही अर्थ बता दिए, पर आपने हिंदू टर्म पर कुछ नहीं कहा, आजकल तो हिंदुत्व शब्द पर इतनी चर्चा होती है, आपसे हम इसका भी सही अर्थ समझना चाहेंगे।
ठीक तो है, आज का ज्वलंत प्रश्न है। मैंने इसलिए हिंदू शब्द पर व्याख्या नहीं की कि बाकी जितने भी शब्द थे वो सब गुणवाचक हैं, किसी न किसी गुण पर आधारित हैं। हिंदू शब्द गुणवाचक नहीं है, ये भूगोल से संबंधित है, भूमि से संबंधित है। कैसे इस शब्द की उत्पत्ति हुई इसे समझें। बहुत पुराने समय में जितना भी अपने पास साहित्य उपलब्ध है, पुराना साहित्य, उसमें कहीं हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। तो ये शब्द कहां से आया, क्या हुआ? पांच कोस पर वाणी बदले दस कोसे पर पानी, ये स्वभाव है। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाणी बदलती है, उसका उच्चारण बदलता है। तो हम देखते हैं कि अपने देश में गुजरात से पश्चिम की ओर जाते चले जाओ तो सह शब्द का है हो जाता है, उच्चारण बदल गया। इस ओर समझी गयो कहेंगे तो वहां कहेंगे हमझी गयो, सह का है हो गया। ऐसे राजस्थान में भी जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे सह का हो है होता चला जाएगा। यहां कहेंगे सांप, वहां कहेंगे हांप। तो ये सह का है हो जाना एक नियम है प्रकृति का, बोली बदलती है। और आगे पश्चिम की ओर जाते जाते हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों में, जो पश्चिम में देश हैं, उनके यहां तो ये सह का है बहुत कॉमन। तो हमारे यहां जो सिंधु नदी, इसको वो लोग वहां हिंदू नदी कहने लगे, सह का है हो गया। और आगे बढ़े तो जब ग्रीक यवन लोग आए तो उन्होंने और उच्चारण बदल दिया, इंडस कह दिया इसे। और समय बदला, ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने इंडिया कह दिया। ये उच्चारण भेद है, सिंधु, सिंधु का हिंदू बना। आज भी सिंधु नदी और उस तट पर रहने वालों को, उस तट के देश को सिंध कहते हैं। तो सह का है हो तो उसे हिंद कहें। आज भी उस प्रदेश के रहने वाले लोगों को सिंधी कहते हैं, सिंधु के पास रहने वाले लोग सिंधी, और सह का है हो तो हिंदी। इससे एक बात सामने आई कि हम एक भावनात्मक राष्ट्रीय एकता चाहते हैं, आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसमें देश के हर संप्रदाय के लोग अपने आप में एक राष्ट्रीय भावना लाएं। हम चाहते हैं कि वो हिंदू शब्द के साथ आए, मुश्किल है, नहीं होगा। हम ये कभी सोच नहीं सकते कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपने आप को हिंदू मुस्लिम कहने लगेंगे, बौद्ध लोग हिंदू बौद्ध कहने लगेंगे, सिख लोग हिंदू सिख कहने लगेंगे, ये होने वाली बात नहीं। लेकिन ये जो है, अगर जैसे सिंध के रहने वाले सिंधी, वैसे हिंद देश के रहने वाले हिंदी, हिंदी शब्द हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आज भी अपने यहां के मुसलमान जब मिडल ईस्ट में जाते हैं, अरब देश में जाते हैं, तो उनको हिंदी मुसलमान कहते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदी मुसलमान कहते हैं। तो हिंदी शब्द के प्रयोग में किसी को कठिनाई नहीं होगी। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये प्रचलित भी है। तो हिंदी शब्द का प्रयोग करके हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो हम चाहें तो जो बहुत प्रचलित शब्द हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तानी, भारत के रहने वाले भारतीय, तो हिंदुस्तानी मुस्लिम, हिंदुस्तानी सिख, हिंदुस्तानी बौद्ध, किसी को कोई कठिनाई नहीं। तो शब्द ऐसा चुनना चाहिए जो सर्वमान्य हो और किसी को कोई एतराज नहीं हो, और जिससे सही माने में राष्ट्रीय एकता बनती हो, तो हिंदी शब्द का प्रयोग करें।
जी गुरुजी, आपने हमारे प्रश्नों के बहुत ही अच्छे उत्तर दिए, धन्यवाद। दर्शकों, गुरुजी से हमारी बातचीत जारी रहेगी, मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुरुजी, आपने हमें बताया कि गलत बातों से बचने के लिए हमें सदाचरण का पालन करना चाहिए, तो गुरुजी आप हमें शील सदाचरण की व्याख्या समझाएंगे।
जैसे कहा कि वाणी से, शरीर से, कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, अन्य शान्य को प्राणी को दुख पहुंचता हो, पीड़ा पहुंचती हो। कहा भी गया कि तलवार का घाव तो भर भी जाए, वाणी का घाव नहीं भरता। जन्म भर याद रखता है इसने मेरे अपमान किया। उपहास के दृष्टिकोण से ही हमारे यहां के एक कवि ने, रहीम बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने कहा कि रहीमन जिव्वा बावली और कह गई सरग पताल। स्वर्ग की बात की, पताल की बात की, यहां की बात की, वहां की बात, और क्या क्या कह गई। कह गई सरग पतार, आप तो कह भीतर गई और जूती खात कपार। अब जूती पड़ती है अकबाल पर, वो तो भीतर चली गई। माने झगड़े फसाद जो होती हैं इस जबान की नासमझी की वजह से, हम नासमझी में बात करते हैं और उसमें झगड़े फसाद बढ़ते हैं हमारे। तो समझदारी इस बात में है कि बोलते वक्त खूब होशियार होकर बोले, मेरे इस वचन से किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंचेगी, मेरे इस वचन से किसी का मन सुखी तो हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, ऐसे ही बोले। अपने यहां गोस्वामी जी ने भी कहा, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहूं और, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। जहां कठोर और कटु वचन बोला कि वहां दुश्मनी होगी, और जहां मीठे वचन बोले वहां समझो लोगों को वशीकरण कर लिया, सब अपने हो गए, सब मित्र हो गए। सच बोलने में, और सच भी प्रिय सच बोलने में, सच तो कहा, एक आदमी अंधा उसे गारे अंधे, तो सच तो है। और हम कहें सूरदास जी तो बात तो वही है, तो कैसे कहें, उस पर सत्य भी हो प्रिय भी हो। तभी अपने यहां कहा गया, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम। जो अप्रिय सत्य है वो न बोले। बोली का बहुत बड़ा महत्व है, बोली अगर संभाल के न बोली जाए, किसी को भी चुभने वाली बात कही तो अपनी भी हानि, उसकी भी हानि, सारे वातावरण की भी हानि। तो शील पालन में प्रमुख बात पहले वाणी की बात, क्योंकि मन में जो कुछ उठता है वो जब बाहर निकलता है तो वाणी के रूप में निकलता है, उसके बाद शरीर का काम शुरू होता है। तो यहीं अगर नियंत्रण हो जाए, हम देखें कि मन में जो उठा है वो वाणी में हम गलत तरीके से ना बोल जाएं, तराजू की तरह तोल करके उसको बोलें, जब बोले तब तोल कर, तोल कर बोल, बस ठीक हो जाएगा सारा कुछ।
जी गुरुजी, ये तो बड़ी सुंदर बात बताई आपने हमें। गुरुजी, हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे करना चाहेंगे, वो है बिजनेस में शील का पालन। लेकिन गुरुजी, हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो इस बारे में हम आपसे बात अगले एपिसोड में करेंगे।
बहुत ठीक।
प्रणाम गुरुजी।
सुखियो।
प्रणाम माता।
सुखियो।
तो दर्शकों, आप हमें इसी तरह प्रश्न भेजते रहे, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते रहे। तो अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा। नमस्कार दर्शकों, पिछली बार हमने विपाशना के प्रथम चरण शील के बारे में बात की, ये भी समझा कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, ये भी जाना कि शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हम सुखी और शांत रह सके। आज हम शील के दूसरे हिस्से यानी शरीर से जो कर्म करते हैं उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे हमारे गुरु जी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माताजी। गुरुजी, पिछली बार आपने वाणी के शील के बारे में बताया, आज हमें शील के दूसरे हिस्से के बारे में कुछ बताएंगे?
जैसे वाणी के कर्मों को निर्मल रखना चाहिए, मैल से दूर रखना चाहिए, तो वाणी जो बोले वो सही भी हो, कल्याणकारिणी भी हो। वही बात शरीर के कर्मों के प्रति है कि शरीर के कर्म सही हो, कल्याणकारी हो, शरीर के कर्मों का जो मैल है उसे दूर करते चले जाएं तो अपने आप कर्म पवित्र हो गए। शरीर के कर्मों का मैल क्या है? कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो शरीर के कर्म मैले हो गए। कोई किसी दूसरे की वस्तु चुरा ले, छीन ले, झपट ले, लूट ले, अपना ले, शील का कर्म मैला हो गया। बस इन मैल से जो बचे तो शील पवित्र हो गया अपने आप। तो काया के कर्म भी ऐसे होने चाहिए जो किसी दूसरे की हानि भी नहीं करें, दूसरे किसी की शांति भी भंग नहीं करें, दूसरे किसी का सुख भी नहीं भंग करें और अपने भी शांति नहीं भंग करें, अपना भी सुख भंग नहीं करें, तो काया का शील भी अपने आप शुद्ध हो गया। हिंसा, चोरी, मद्य रत रहे निरत व्यभिचार, ये ही काया मैल हैं, काया शील सुधार। ये मैल गए कि अपने आप शील सुधर गया।
लेकिन गुरुजी, मन में एक प्रश्न उठता है कि अगर इंसान खुद कुछ गलत नहीं करे लेकिन दूसरों से करवाए तो क्या ये सही है?
बिल्कुल सही नहीं बेटी। खुद करे कि दूसरे से कराए, बुरा कर्म तो बुरा कर्म ही है, दुशील तो दुशील ही है। मैं हत्या न करूं पर किसी को कहूं तू हत्या कर दे तो मेरे कहने पर उसने हत्या कर दी तो शील शुद्ध नहीं हुआ। शील तीन प्रकार से शुद्ध होना चाहिए। पुरानी भाषा में उसे कहा त्रिविध, त्रिविध शील, त्रिविध शुद्ध शील। तीन तरह से शुद्ध हो। न तो स्वयं कोई शरीर का दुष्कर्म करे या वाणी का दुष्कर्म करे, न किसी दूसरे से करवाए, और अगर कोई तीसरा व्यक्ति करता हो और हम उसे अनुमोदन करें, बड़ा अच्छा किया, अरे तूने बड़ा अच्छा किया, वो भी न करे। यूं त्रिविध शुद्ध होता है तो शील संपूर्ण रूप से शुद्ध होता है।
गुरुजी, अक्सर कामकाज में और बिजनेस में सच और झूठ तो चलता ही रहता है ना, और कहते हैं ये आवश्यक भी होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
आवश्यक नहीं होता बेटी। मन को जरा मजबूत करे और सच्चाई का व्यापार करे, शुरू शुरू में कठिनाई होगी, फिर आगे जाकर के प्रतिष्ठा हो जाएगी इस व्यक्ति की। इसके दुकान से माल खरीदने में कोई धोखा नहीं है, ये सच्चाई का काम करता है तो और सफलता मिलेगी। व्यवसाय में बस एक बात देखनी चाहिए कि जैसे हम वाणी के कर्मों को शुद्ध रखते हैं, ठीक इसी प्रकार आजीविका ऐसी हो कि जैसे किसी का अनहित न होता हो, किसी का हित न बिगड़ता हो। इसलिए कहा गया जीशु जन अनहित हुए वो कूड़ो व्यवसाय, जीशु जन जन हित हुए वो साचो व्यवसाय। सच्चा व्यवसाय वही है। एक आदमी कहता है कि मैं तो नशा पता नहीं करता, शील का पालन करता हूं, अच्छी बात है, लेकिन धंधा क्या करता है? शराब बेचता है और अफीम, गांजा, ड्रग, चरस बेचता है, उसका धंधा करता है। तो खुद तो नहीं नशा पता करता, पर जो उसे खरीद के ले जाएगा वो अपना शील भंग करेगा, तो आजीविका शुद्ध नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई। जिस किसी काम से हम अन्य किसी व्यक्ति को गलत रास्ते जाने में सहयोग देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, वो व्यवसाय भले हमारे घर में पैसा आता है लेकिन इससे दूसरे लोग अपनी हानि करते हैं, अपना शील भंग करते हैं, वो काम की बात नहीं हुई। तो मद्य, मांस, विष, जीवरो, और शस्त्रारो व्यापार है मैली आजीविका, अनर्थ करे अपार। अनर्थ ही अनर्थ होता है, इससे बचना चाहिए।
जी गुरुजी, ये तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक अपने बिजनेस को आप ही की बातों से जांचेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गुरुजी, अभी अभी जो आपने काम बताए उनके अलावा अन्य जो काम है उन्हें तो उचित मानने चाहिए ना?
हाँ बेटी, बहुत से काम हैं, बहुत सी आजीविका है, बहुत से धंधे हैं, बहुत से रोजगार हैं, जिसमें कोई दोष नहीं है, बड़े निर्दोष हैं। लेकिन कितना ही निर्दोष क्यों न हो, काम करने वाले के चित्त की चेतना कैसी है? धन कमाने में कोई दोष नहीं, लेकिन चित्त की चेतना औरों को हानि करने की है तो अच्छे से अच्छा काम भी बुरा काम हो गया। मुझे अपने जीवन की एक घटना याद आती है, बहुत पुरानी बात है, तब मैं शुद्ध धर्म के संपर्क में भी नहीं आया था। घर में कोई बहुत बीमार पड़ गया और जो हमारा फैमिली डॉक्टर था उसे फोन किया तो पता लगा कि वो रंगून छोड़ के कहीं अप कंट्री गया हुआ है। रोगी की ऐसी हालत की किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो एक और डॉक्टर मेरा मित्र था, लेकिन वो इतना बिजी कि वो घर आएगा इसकी बहुत आशा नहीं थी, लेकिन हिम्मत करके चला गया। और संयोग से देखता हूं कि उसके पास कोई रोगी नहीं, हमेशा रोगियों की भीड़ लगी रहती है। तो मन तो प्रसन्न हुआ कि अब ये डॉक्टर घर आने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन कौतूहल के मारे उससे प्रश्न कर लिया, डॉक्टर साहब आपके यहां तो रोज इतनी भीड़ रहती है, आज आपके डिस्पेंसरी में कोई रोगी नहीं? तो बड़े उदास चेहरे से कहता है, वो इनका क्या बताऊं, इस सीजन में तो शहर में कोई ना कोई बीमारी फैलती ही है, इस साल कोई बीमारी नहीं फैली। मैं उसके मुंह की ओर देखूं, कैसा डॉक्टर है, ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बीमारी फैले, ज्यादा से ज्यादा लोग रोगी हों, तो उसके घर पैसा है। बड़ा मन खराब हुआ, ले गया उसे और इलाज करवाना तो करवाया। कुछ वर्षों बाद जब शुद्ध धर्म के संपर्क में आया, क्या शुद्ध धर्म होता है, अभी जो बताया, शील समाधि प्रज्ञा और विपश्यना, अपने अंदर क्या हो रहा है उसे देखने की एक विद्या, वो देखने लगा, अपने बारे में तो सच्चाई देखने लगा, तो मालूम हुआ, अरे उस दिन बेचारे उस डॉक्टर के प्रति मन खराब किया। हम व्यापारियों की क्या अवस्था है, कहीं जंग छिड़ गया, विश्व युद्ध हो गया और कंज्यूमर आइटम से कमी हो गई और दाम चढ़ने लगे, तो हम अपनी व्यापारी भाषा में कहते हैं कि बाजार सुधर रहा है। हमारे लिए बाजार सुधर रहा है, लोगों को इतनी हानि हो रही है और लड़ाई उड़ाई खत्म हुई, कोई दुर्भिक्ष भी नहीं है, खूब उपज हुई, कंज्यूमर आइटम खूब मिलने लगे, दाम गिरने लगे। हम बड़े उदास होकर कहते हैं कि बाजार चौपट हो गया, हमारे लिए बाजार चौपट हो गया। तो मनोवृत्ति क्या, चित्त की चेतना क्या, चित्त की चेतना अगर दूषित है तो अच्छे से अच्छा व्यवसाय भी दूषित हो गया।
जी गुरुजी, गुरुजी लेकिन ये जो हमारा व्यापार वर्ग है ये हमेशा यही कहता है कि शासन की जो व्यवस्था है, आज समाज की जो व्यवस्था है, इसमें उन्हें ईमानदार रहना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे में वो क्या करें?
जो राज्य तंत्र है बिगड़ा हुआ है और इस मारे व्यापारियों को जगह जगह घुटने टेकने पड़ते हैं। एक बार इस बात को एक और रखें, और दो बातें हैं जो व्यापारी बड़ी आसानी से कर सकता है और उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आती, और वो दो बातें ये हैं कि हमारा जो ग्राहक है, हमसे जो माल खरीद के ले जाएगा वो हमारा ग्राहक है, हमको जो आमदनी होगी वो उस व्यक्ति से होगी, तो वो हमारा अन्नदाता है, उसकी वजह से हमारे घर में अन्न आया। तो एक बात ख्याल रखेंगे, कभी अपने अन्नदाता को धोखा नहीं देंगे। एक और दूसरी बात, गृहस्थ है, धन कमाना आवश्यक है, उसके लिए अनिवार्य है, बड़े ईमानदारी से कमाता है, किसी को धोखा भी नहीं देता, फिर भी एक कठिनाई खड़ी होती है, अभी तक पका नहीं धर्म में, तो जैसे जैसे घर में धन आता है एक नशा चढ़ता है, अहंकार का नशा। अरे मैं कितना होशियार, कितना चतुर कि मेरी वजह से इतना धन आया घर में। ये जो अहंकार बढ़ता है वहां पर धर्म टिक नहीं सकता, तो क्या करे। तो हमारे देश के महापुरुषों ने, सदगुरुओं ने एक रास्ता बताया, जब भी तेरे घर में धन आए तो समझो कि यह धन समाज से आया है। तो जो धन आया है, जो आमदनी हुई है, उससे तेरा अपना भरण पोषण करना आवश्यक है, अपने परिवार का भरण पोषण करना आवश्यक है, और जो जो तेरे पर आश्रित हैं उनका भरण पोषण करना आवश्यक है। लेकिन इसके बाद जो बचे उसका सम विभाग होना चाहिए, बांटना चाहिए। उसका कुछ हिस्सा, अधिक कमाता है तो अधिक हिस्सा, थोड़ा कमाता है तो थोड़ा हिस्सा सम विभाग करना चाहिए, माने समाज को देना चाहिए, दान करना चाहिए। ये धर्म की बात है। और अपने अहंकार को नीचे करने की बात, हम अपने लिए नहीं कमा रहा, औरों के लिए भी कमा रहा हूं, समाज के लिए भी कमा रहा हूं, तो उससे अहंकार नीचा होगा, कम होगा, निकलता चला जाएगा।
जी गुरुजी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात समझाई। गुरुजी, हमारे शो का अगला हिस्सा दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है, तो दर्शकों कहीं मत जाइएगा, अभी लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, पहला प्रश्न आया है आनंद शर्मा जी का जबलपुर से। वो पूछते हैं कि कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमारे झूठ बोलने से किसी का भला होता है, तो ऐसे में थोड़ा सा झूठ बोलने में क्या हर्ज है?
बहुत बड़ा हर्ज है बेटी। किसी भी कारण से जहां झूठ बोलने की आदत डाली कि बस, फिर तो हर छोटी मोटी बात पर झूठ बोलेगा और उसका न्यायीकरण करेगा। ऐसा करने से देखो उसका ये भला हो गया, उसका ये भला हो गया। भला हो गया कि नहीं हो गया ये भी हम पूरी तरह नहीं जानते, लेकिन क्योंकि झूठ बोलते हैं इसलिए अपने झूठ का न्यायीकरण करने के लिए काम करेंगे। तो गलत रास्ते कदम उठाना ही नहीं चाहिए। ये झूठ बोलने का जो शील भंग है, ये जब भंग होता है तो बाकी शील आसानी से भंग होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें कहीं किसी तरह की गुंजाइश नहीं, कोई छूट नहीं। हमेशा सच ही बोले, प्रिय बोले, कल्याणकारी बात बोले।
गुरुजी, दूसरा प्रश्न पूछ रही है अंजलि वर्मा बीकानेर से। वो पूछती है कि कभी ऐसा होता है कि कोई गलत काम कर लिया, उसका पछतावा भी होता है और फिर निरंतर गिल्टी भी फील करते हैं, तो फिर ऐसे में हम क्या करें?
नहीं बेटी, ये गलत, बिल्कुल गलत। गलत काम कर लिया उसका न्यायीकरण कभी नहीं करना। हमसे ये गलत काम हुआ, हमसे ये अपराध हुआ, उसे स्वीकार करे, छिपाए नहीं, और ये निर्णय करे कि अब इसके बाद ऐसा गलत काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, बस हो गया। ये पश्चाताप करना और पछतावा करना और प्रायश्चित करना काम की बात नहीं है।
जी गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं जगदीश कुमार जी पूना से। वो पूछते हैं कि हर कार्य के आरंभ में गणपति की पूजा की जाती है और मान लेते हैं कि अब आगे गणेश जी ही हमारी रक्षा करें, तो फिर गुरुजी हम अच्छे बुरे की फिक्र ही क्यों करें?
अच्छे बुरे की फिक्र तो करनी ही पड़ेगी बेटी। हम अपनी रक्षा करने सीखें, फिर देखें सारे देवी देवता दृश्य अदृश्य शक्तियां हमारी रक्षा करने लगी। हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो और हमारी रक्षा कोई कैसे करेगा? और गणपति की बात तो भूल ही गए, क्या गणपति होते हैं? भारत में कभी बहुत गणराज्य थे, गणराज्य ही गणराज्य। उन गणराज्यों का जो अधिपति है वो गणाधिपति, वही गणपति। तो संकेतों की भाषा में जो गण का नायक है, गणपति है, उसके क्या गुण होते हैं, ये सिंबॉलिक भाषा में हमें समझाया गया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश का नेता है, गण का नेता है, राज्य को संभालना है, तो सिर हाथी का दे दिया, क्योंकि बहुत मेधावी होना चाहिए, बहुत बुद्धि होनी चाहिए, और उसके कान देखे खूब बड़े बड़े। तो कान बहुत बड़े बड़े किस लिए? खूब सुनेगा, सबकी सुनेगा, ये नहीं कहेगा हमें फुर्सत नहीं है, हम नहीं मिलते किसी से। गणाधिपति है, कान खोल करके सारे राज्य में, सारे गणराज्य में क्या हो रहा है इसके खूब खबर रखता है। बोलेगा बात कम तो मुंह के आगे सूंड दे दी इतनी बड़ी, बोले कम और जब बोलना हो, कोई दुश्मन हम पर हमला कर रहा है तो इतने जोर से चिंघाड़ेगा कि दुश्मन कांप उठेगा। रिद्धि है, सिद्धि है, बहुत काम करने वाला है ना, तो खूब रिद्धि सिद्धि समृद्धि खूब इकट्ठी होती है, खूब संभाल के रखता है। तो इसीलिए जैसे कहा, गणान्नान्त्वा गणपति ग्वंग वामहे, वो गणपति है, सारे गण का अधिपति है। ऐसे ही कहा, निधिनान्त्वा निधिपति गंग वामहे, सारी निधि जो है संपदा है संभाल के रखता है। इसीलिए जो गणपति है वो निधिपति भी है, बहुत समझदारी के साथ सारा जीवन उसको राज करना है, लोगों का नेतृत्व करना है, अहंकार के लिए नहीं, तो सबसे काम लेगा, सारे लोग जो जिस लायक है उसको गण के लिए काम करना है, तो उसके लिए एक सिंबल दिया, चूहा भी उससे भी काम लेगा। तो माने छोटा बड़ा कोई हो, गण के लिए, गण में रहने वाले हर व्यक्ति उसमें सहयोग देंगे, उसमें साथ देंगे, ये उसकी विशेषता है। हमें ये सारे गुण समझने चाहिए और उन गुणों को धारण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तो हम गणपति के पुजारी हुए, तो हम गणपति के प्रति श्रद्धालु हुए, अन्यथा कोरी बातों में क्या पड़ा है, समझना चाहिए।
जी गुरु जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर। जाइएगा मत, हमारी गुरु जी से बातचीत जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरु जी, आपने दान करने की बात की, इस पर कुछ और बताएंगे?
बेटी, दान कोई कैसे करेगा, कुछ कमाएगा तो न करेगा, तो जो गृहस्थ है पहली बात उसे ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ, पुरुषार्थ के साथ, बिना किसी की हानि किए हुए धन कमाना है, वो कहीं हाथ न पसारने लगे। तो इसीलिए कहा गया कि गृहपति तो कंगलो बुरो, और गृह त्यागी धनवान, जिसने घर छोड़ दिया सन्यासी हो गया, वो अगर धनवान होता है तो गलत बात है, और इस तरह जो गृहपति है, गृहस्थ है, वो कंगला होता है तो बुरी बात है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो धर्म न धारण कर सके और सदै नहीं कल्याण, कोई कल्याण होता नहीं। तो गृहस्थ है उसे धन कमाना ही है, कभी हाथ नहीं पसारे किसी के सामने, ये ख्याल रखे। गृहपति तू मत दीन बन, मत तू हाथ पसार, अपने श्रम श्यू और धर्म श्यू अपनो लोक सुधार। मैंने से कमाए, धर्म से कमाए और तब दान की बात करें। तो दान की बात तब होती है जबकि ईमानदारी से घर में पैसा आए, और नहीं तो एक कहावत अपने यहां, ऐरण की चोरी करी और करियो सुई को दान, और ऊपर चढ़कर देखण लाग्यो कब आसी बीमान। सुई का दान दे दिया और चोरी की इतने बड़े को ऐरण की, ईमानदारी से कमाए और फिर दान चाहे कम दे चाहे ज्यादा दे, तो देखेंगे उसका फल आएगा ही। अर्जित संपत्ति का सदा समुचित हो उपयोग, तो गृहपति का सुख बढ़े, बढ़े नहीं भव रोग। ये नियम प्रकृति का, कि ईमानदारी से कमाएंगे और बांटेंगे, उसका उपयोग करेंगे, अच्छा उपयोग करेंगे, तो इस जीवन में भी सुखी रहेंगे और आगे भविष्य भी सुखी होंगे।
जी गुरु जी, धन्यवाद, आपने गृहस्थ के लिए तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई। गुरु जी, आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपको गुरु जी की बात आपके अपने जीवन में अपनाने जैसी लगेगी। इसी बात पर विदा लेती हूँ। आप अपने प्रश्न हमें लिखना ना भूलिए। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर मिलेंगे ऊर्जा में। नमस्कार।